अध्याय 10, जापान की विश्व के प्रमुख देशों में गणना 1894 से 1937। पहला, चीन के साथ युद्ध बक्सर विद्रोह तथा रूस के साथ युद्ध 1894 से 1905। सन 1894 के बाद जापान की विदेशी मामलों में रुचि। इस बात का ऊपर उल्लेख किया जा चुका है कि 1894 तक जापान के आंतरिक पुनर्गठन का कार्य उस सीमा तक पहुंच चुका था कि अब इस पर देश का सारा ध्यान केंद्रित करना आवश्यक नहीं था, और यह केवल उपयोगी ही नहीं बल्कि आवश्यक भी था कि वह अंतर्राष्ट्रीय मामलों में अधिक सक्रिय रूप से भाग ले। नव जापान ने जनसंख्या, उद्योग एवं वाणिज्य के क्षेत्र में विस्तार किया। इस विस्तार के साथ साथ जापान की उग्र देशभक्ति और पूर्व की विद्यमान परिस्थितियों के कारण जापान का अन्य देशों के साथ भयंकर संघर्ष निश्चित था। सर्वप्रथम कोरिया में विवाद खड़ा हुआ और इसने अनेक घटनाओं को जन्म दिया जो संपूर्ण विश्व के लिए महत्वपूर्ण थी। अब हालात कुछ ऐसे हो गए थे कि कोरिया में संघर्ष अवश्यंभावी सा प्रतीत होने लगा था। स्मरण रहे कि सन 1885 के समझौते के द्वारा चीन और जापान के बीच मतभेदों का कुछ काल के लिए निपटारा अवश्य हो गया था, लेकिन दोनों ही देश गुप्त रूप से एक दूसरे के विरुद्ध षड्यंत्रों का जाल बुन रहे थे। रूस अभी पृष्ठभूमि में ही था और जापान के कूटनीतिज्ञ इस तथ्य से भली भांति परिचित थे कि चीन के बजाय रूस से अधिक भयभीत होने की आवश्यकता है। जापान का यह विश्वास था कि यदि कोरिया पर रूस का आधिपत्य हो गया तो उसके द्वार पर एक अत्यंत भयंकर आक्रांता आ बैठेगा तथा वाणिज्य पर विषम प्रतिबंध लगाकर निकटवर्ती महाद्वीप के साथ उसका वाणिज्य व्यापार समाप्त कर देगा, और साथ ही उसकी बढ़ती हुई जनसंख्या के निष्क्रमण का मार्ग बंद हो जाएगा। इस बात का उल्लेख किया ही जा चुका है कि जारकालीन रूस व्लाडिवास्तोक से खुले प्रशांत महासागर तक अपने आवागमन के मार्ग को सुरक्षित बनाने के लिए दक्षिण कोरिया पर कब्जा करना चाहता था। निस्संदेह इसका उद्देश्य कोरिया अथवा उत्तरी चीन के हिम रहित बंदरगाहों पर अधिकार करके साइबेरिया के रेल मार्ग तथा व्यापार मार्गों के लिए द्वार खोलना था, और साथ ही सुदूर पूर्व पर वाणिज्यिक और नौसैनिक नियंत्रण के लिए मार्ग प्रशस्त करना था। वह कोरिया में पहले से ही षड्यंत्र कर रहा था। पिकिंग पर उसका ध्यान, उसका इतना अधिक प्रभाव था कि अपने कार्य की सिद्धि के लिए वह चीन को साधन के रूप में प्रयुक्त कर सकता था। जापान को अपने सामर्थ्य पर भरोसा नहीं था और वह रूसी आतंक से संत्रस्त था, इसलिए उसने कोरिया की अयोग्य तथा भ्रष्ट सरकार को पुनर्गठित करने के लिए सुधार दल को सशक्त बनाने का प्रयत्न किया ताकि वह विदेशी आक्रमण का मुकाबला कर सके। कोरिया के संबंध में चीन से युद्ध 1894 से 1895। चीन द्वारा समर्थित प्रतिक्रियावादियों और जापान द्वारा पोषित सुधारवादी दल के बीच समय समय पर संघर्ष छिड़े, जिनके फलस्वरूप कोरिया की अयोग्य द्वारा सरकार पहले की अपेक्षा भी अधिक निकम्मी हो गई। सन 1885 के समझौते के बाद विवाद को हल करने का कोई अस्थायी समझौता नहीं कहा जा सकता था, क्योंकि इसने दोनों पक्षों के हितों को स्वीकार कर संघर्ष को और अधिक उत्तेजित किया। चीन कोरिया को अपना एक अधीनस्थ राज्य मानता था और वह जापान के इस विचार को कि कोरिया एक स्वतंत्र राज्य है अपेक्षा की दृष्टि से देखता था। धीरे धीरे संघर्ष उग्रतर होता गया और अंततोगत्वा इसने विद्रोह का रूप धारण कर लिया। इसके दमन के लिए चीन ने सेनाएं भेजी और अपने इस कार्य की सूचना जापान को दी। वस्तुतः चीन ने 1885 के समझौते का पूर्णतः पालन नहीं किया था, क्योंकि चीन ने सेनाओं के भेजने की सूचना सेनाएं भेजने से पहले देने के बजाय बाद में दी थी। चीन की कार्यवाही का पता चलने पर जापान ने भी अपने सेनाओं को कोरिया भेजने का फैसला किया। और अपने इस आशय की सूचना चीन को भेज दे। यद्यपि जिस विद्रोह का दमन करने के लिए वहां सेनाएं भेजी गई थी वह शीघ्र ही शांत हो गया, लेकिन फिर भी दोनों ही देशों ने अपनी अपनी सेनाएं कोरिया में कायम रखी। जापान ने एक प्रस्ताव द्वारा यह सुझाव दिया कि चीन कोरिया सरकार को पुनर्गठित करने और अव्यवस्था दूर करने में उसे सहयोग दे। चीन ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और कोरिया को एक स्वतंत्र राज्य मानने से भी इनकार किया। इसके साथ ही उसने कोरिया में भेजी जाने वाली जापान की सेनाओं की संख्या तथा उनके उपयोग की सीमा निर्धारित करने के अपने अधिकार का भी दावा किया। स्पष्ट ही चीन को यह संदेह था कि जापान इस प्रायद्वीप पर अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहता है, इसलिए उसने इस भूभाग पर अपने एकाधिपत्य का दावा किया। इसी समय जापान में डाइट की अवर सदन और मंत्रिमंडल के बीच उग्र रूप से संघर्ष चल रहा था, और चीन का ख्याल था कि जापान अपने आंतरिक मतभेदों के कारण इतना अधिक जीर्ण शीर्ण हो चुका है कि वह युद्ध के लिए सन्नद्ध नहीं है। इसके अलावा चीनियों के मन में इन द्वीपीय बौनों के प्रति अत्यधिक तिरस्कार की भावना थी, क्योंकि जापान ने आरंभ में उनकी सभ्यता का अनुकरण किया था और आज उसका अंशतः परित्याग कर पाश्चात्य सभ्यता को अंगीकार कर लिया था। चीन ने कोरिया में और अधिक संख्या में सेनाएं भेजनी शुरू कर दी। यद्यपि इससे पूर्व जापान यह चेतावनी दे चुका था कि इस प्रकार की किसी भी कार्रवाई का मतलब युद्ध होगा। इसी समय जब कुमुक का एक दस्ता कोरिया के मार्ग में ही था, जापानी नौसेना के साथ उसकी सशस्त्र मुठभेड़ हो गई, जिसके फलस्वरूप दोनों देशों के बीच युद्ध छिड़ गया। चीन के लिए यह बड़े आश्चर्य की बात थी कि युद्ध आरंभ होते ही जापान के आंतरिक मतभेद समाप्त हो गए और वहां के लोगों में एकदम दृढ़ ऐक्य स्थापित हो गया। उन्होंने बड़े उत्साह से सम्राट की सेनाओं का साथ दिया। वह मंत्रिमंडल भी संभवतः अप्रत्यक्ष रूप से यही चाहता था कि जनता की वर्तमान विचारधारा का रुख उत्तरदायी मंत्रिमंडल से हटाकर राजतंत्र की ओर मोड़ दिया जाए। वस्तुतः कुछ लोगों ने आवाज भी उठाई कि सरकार विस्तारवादी नीति का आशय लेकर युद्ध की आड़ में राष्ट्र का ध्यान संवैधानिक संघर्ष से हटाना चाहती है। जल एवं स्थल दोनों ही क्षेत्रों में चीनी सेनाओं को पराजय का मुंह देखना पड़ा। उनकी नौसेना, जो आधुनिक युद्धपोतों से लैस थी, पूर्ण परास्त हो गई और उनके युद्धपोतों के अवशेष या तो समुद्र में डुबा दिए गए या उन पर जापानियों ने कब्जा कर लिया। जापान ने लिप्राओतुंग प्रायद्वीप तथा दक्षिण मंचूरिया पर स्थित नौसेना के पोर्ट आर्थर और देरेन केंद्रों पर अधिकार कर लिया था। इन दोनों ही स्थानों की किलेबंदी यूरोपीय इंजीनियरों की देखरेख में की गई थी, और इनमें से भी पोर्ट आर्थर को एक उत्तम प्राकृतिक बंदरगाह होने के कारण विशेष रूप से सशक्त समझा जाता था। मंचूरिया की राजधानी मुकदेन पर जापानी आक्रमण का खतरा सन्निकट था तथा शांतुंग के बंदरगाह वे हाईवे के बड़े दुर्ग पर भी उन्होंने आधिपत्य जमा लिया था। इस प्रकार उत्तरी चीन तथा पीकिंग के नौ मार्ग जापान के नियंत्रण में थे। इसी समय जापान ने फार्मोसा तथा पैस्का दोरेस द्वीपों पर सफल सैनिक अभियान भेजा। फलस्वरूप चीन को जापान से शांति समझौते के लिए प्रार्थना करनी पड़ी। युद्ध को समाप्त करने के लिए की गई संधि शिमोनोसेकी की संधि अप्रैल 1895 के अंतर्गत कोरिया की पूर्ण स्वाधीनता को औपचारिक रूप से केवल चीन द्वारा मान्यता प्रदान की गई। दक्षिण मंचूरिया का लियाओतुंग प्रायद्वीप जापान को सौंप दिया गया। फार्मोसा और पैस्का दोरेस द्वीप उसे दे दिए गए। चीन ने हर्जाने की बहुत बड़ी रकम, लगभग 15 करोड़ डॉलर, देना स्वीकार किया तथा चीन विश्व के देशों के व्यापार के लिए यांगत्सी नदी तथा कुछ अन्य संधि बंदरगाह खोलने पर सहमत हो गया। जापान के बौनों ने चीन के भीमकाय लोगों को परास्त कर दिया था और यह दिखा दिया था कि सुदूर पूर्व में जापान एक अत्यंत महत्वपूर्ण शक्ति है।